डॉक्टर डेव मैथ्यूसन, न्यू टेस्टामेंट साहित्य, व्याख्यान 5, क्रिसमस और कैनन। 2024 डेव मैथ्यूसन और टेड हिल्डेब्रांट। मैं डॉक्टर डेव मैथ्यूसन न्यू टेस्टामेंट इतिहास और साहित्य प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्रिसमस और कैनन पर व्याख्यान 5। ठीक है, चलो आगे बढ़े और आगे बढ़े। हम यह देख रहे हैं, हालांकि मैं इसे जल्दी से आगे बढ़ाना चाहता हूं ताकि हम स्वयं न्यू टेस्टामेंट पाठ तक पहुंच सकें। क्या हम न्यू टेस्टामेंट के आसपास के वातावरण को देख रहे हैं या उस वातावरण को देख रहे हैं जहां से न्यू टेस्टामेंट विकसित हुआ है? आपके लिए ऐतिहासिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक रूप से मंच तैयार करने का प्रयास कर रहा हूँ कि न्यू टेस्टामेंट के निर्माण के समय और उसके दौरान क्या चल रहा था। इसलिए नए नियम को अधिक स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है। उस पृष्ठभूमि और वातावरण को समझना उपयोगी है जिसने इसे तैयार करने में मदद की, या कम से कम उस स्थिति को जिसमें इसे तैयार किया गया था। और फिर नया नियम इससे कैसे प्रभावित होता है, यह उसके साथ कैसे संपर्क करता है, यह उस वातावरण की आलोचना कैसे कर सकता है, आदि। इसलिए हम सिर्फ इसे नहीं देखेंगे और फिर इसे अलग रख देंगे, बल्कि उम्मीद है कि जब हम नए नियम के दस्तावेजों को देखना शुरू करेंगे तो इस सामग्री का अक्सर उल्लेख किया जाएगा। हमने पिछले सप्ताह कुछ सांस्कृतिक ऐतिहासिक वातावरण पर गौर करना शुरू किया और यह वास्तव में हमारे चयनित नए नियम के पाठ की व्याख्या करने के तरीके को कैसे प्रभावित करता है। मैंने आपके लिए नमूने के रूप में कुछ उदाहरण देखे हैं, यह देखने के लिए कि कैसे पृष्ठभूमि को समझने से हम वास्तव में कुछ पाठों को हमारी आदत से बहुत अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन चलिए प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं और फिर हम क्रिसमस की कहानी के बारे में थोड़ी बात करना शुरू करते हैं, उदाहरण के तौर पर कि कैसे हमारी पृष्ठभूमि, हमारा पर्यावरण, हमारी संस्कृति और यहाँ तक कि हमारी परंपराएं धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से अक्सर क्रिसमस को पढ़ने के हमारे तरीके को आकार देती हैं। कहानी, कैसे हम कभी कभी कहानी को समझने में कुछ कमियों को भरते हैं, लेकिन पाठ को दोबारा कैसे देखते हैं और शायद इसे कभी कभी पढ़ते हैं और पहली सदी के पाठकों ने इसे कैसे पढ़ा होगा, या कम से कम यह समझते हैं कि हमारी पृष्ठभूमि कैसे प्रभावित करती है जिस तरह से हम कहानी पढ़ते हैं, और शायद यह देखते हैं कि क्या इसे देखने के वैकल्पिक तरीके भी हैं, ऐसे तरीके जो शायद हमारी पृष्ठभूमि, हमारी परंपरा आदि से इतने रंगीन न हों। लेकिन आइए प्रार्थना से शुरू करें और फिर हम इसे समाप्त करेंगे और पुराने नियम को पढ़ने और व्याख्या करने के तरीके से संबंधित कुछ अन्य प्रश्न पूछने के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है पिताजी, अकादमिक माहौल में आपके शब्द का अध्ययन करने के विशेषाधिकार के लिए धन्यवाद, लेकिन उम्मीद है कि यह अकादमिक से कहीं अधिक है। लेकिन जिस तरह से हम इसे आपके लोगों के रूप में पढ़ते हैं, जिस तरह से हम इसे आपके शब्द के रूप में पढ़ते हैं, उसे पढ़ने के द्वारा समझने की जानकारी देगा। इसके संदर्भ में कुछ मायनों में हम आपके द्वारा खुद को प्रकट करने के लिए चुने गए तरीके का सम्मान कर रहे हैं, यह महसूस करते हुए कि आपने खुद को एक बहुत ही विशिष्ट ऐतिहासिक स्थान पर, एक बहुत ही विशिष्ट धार्मिक और राजनीतिक वातावरण में और बहुत विशिष्ट व्यक्तियों के सामने प्रकट किया है, और वह समझ जो आपको प्रकट करेगी हमें आपके शब्दों को बेहतर ढंग से समझने और सराहना करने में मदद करें, और यह कैसे आज भी हम पर असर कर रहा है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी चर्चा का मार्गदर्शन करेंगे और हमारे विचारों का मार्गदर्शन करेंगे। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, तथास्तु। ठीक है, इसलिए हमने क्रिसमस की कहानी को काफी पारंपरिक तरीके से देखने की दृष्टि से देखा और मैंने कोशिश की, हमने इन सवालों के जवाब देने के कई सामान्य तरीकों और क्रिसमस की कहानी की कल्पना करने के एक सामान्य तरीके के बारे में थोड़ी बात की, जो कि काफी हद तक है, इसमें से बहुत कुछ हमारी परंपराओं से रंगा हुआ है और जिस तरह से हमें कहानी पढ़ने और सुनने के लिए प्रेरित किया गया है। लेकिन मैंने सुझाव दिया कि जब आप पीछे जाएं और पाठ को देखें तो इनमें से कई विशेषताएं, विशेष रूप से इसके परिवेश के प्रकाश में, इनमें से कई विशेषताओं के लिए अलग अलग उत्तरों की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए हमने कहा, विशेष रूप से दूसरा, सराय और सराय का मालिक, जब आप पाठ पढ़ते हैं तो स्पष्ट होता है, न केवल सराय के मालिक का कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि सराय शब्द वास्तव में एक ग्रीक शब्द से आया है जिसका बेहतर अनुवाद किया गया है अतिथि कक्ष के रूप में। इसलिए मैरी और जोसेफ किसी सराय में नहीं गए और रात या समय के लिए ठहरने का भुगतान नहीं किया, बल्कि इसके बजाय वे एक घर के अतिथि कक्ष में रुके जो शायद उनके किसी रिश्तेदार का था। तथ्य फिर से आखिरी बात जिस पर हम समाप्त हुए, तथ्य यह है कि इस गेस्ट हाउस में उनके लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए जब मैरी के जन्म का समय आया तो उसने एक बेटे को जन्म दिया और उसने उसे लिटा दिया। हम चरनी में इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि अतिथि कक्ष में उनके लिए कोई जगह नहीं थी। इसका मतलब यह नहीं है कि मैरी और जोसेफ बेथलेहम गए और पूरे समय अस्तबल में रहे, वे शायद बहुत अच्छी तरह से इस अतिथि कक्ष में रहे होंगे, लेकिन जब बच्चे के जन्म का समय आया, कौन उस कमरे में बच्चा पैदा करना चाहता है जिसे आप कई अन्य लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। इसलिए वे घर के एकमात्र शांत और निजी स्थान पर गए जो अस्तबल होता, जहां नाद रखी जाती थी। अब अस्तबल, हालांकि हम फिर से इस बड़े विशाल कमरे वाले क्षेत्र की कल्पना करते हैं जिसमें सभी गायें और भेड़े और यीशु के चारों ओर ये सभी चीजें हैं, अस्तबल का संदर्भ, हालांकि फिर से यह स्पष्ट रूप से अस्तबल नहीं कहता है, यह केवल यीशु को रखे जाने का संदर्भ देता है एक चरनी में। सबसे अधिक संभावना यह है कि इसका तात्पर्य यह है कि अधिकांश घरों में एक छोटी कोठरी जैसी संरचना रही होगी या यहां तक कि घर के किनारे पर एक झुकाव भी रहा होगा, जहां नांद जैसी चीजें रखी गई थीं और अन्य भेड़ों और जानवरों और इस तरह की चीजों की देखभाल के लिए सामग्री। और फिर इसलिए जहां मैरी और जोसेफ गए थे वह शायद किसी गुफा में नहीं था, वह शायद घर के पीछे कहीं कोई विस्तृत खलिहान या संरचना नहीं थी, बल्कि शायद एक छोटा सा कमरा था या पीछे की तरफ एक छोटा सा अस्तबल था घर के किनारे। और उस अस्तबल में निस्संदेह उन्हें अन्य चीजों के अलावा एक चरनी भी मिली होगी जो मूल रूप से एक चारा कुंड है, जैसा कि आप में से अधिकांश जानते हैं। हालांकि मैंने इसे देखा है, मेरे पास इसकी एक तस्वीर थी और मुझे यकीन नहीं है कि इसका क्या हुआ। मैं इसे अपने पावर पॉइंट में नहीं ढूंढ सकता, लेकिन मैंने फीड ट्रफ या की कई तस्वीरें देखी हैं, नांदे जो खुली हुई हैं। और दिलचस्प बात यह है कि एक बहुत ही सामान्य प्रकार की नांद एक छोटी, वास्तव में एक छोटा पत्थर थी, यह एक चट्टान से बना हुआ एक छेद होता। और आप कल्पना कर सकते हैं, यदि यीशु को एक चरनी में रखा गया था जो एक चट्टान, एक पत्थर थी, तो इससे विनम्रता और अपमानजनक परिस्थितियों में और वृद्धि होती है जिसके तहत यीशु का जन्म हुआ था। एक बार फिर हमने इसे पालतू बना लिया है। हम अक्सर यीशु को खंभों पर बने इस अच्छे लकड़ी के पालने वाले बॉक्स प्रकार की चीज में चित्रित करते हैं जिसमें से घास निकल रही है, और शायद यह उस बिस्तर जितना ही आरामदायक है जिस पर मैं सोता हूँ। लेकिन यह संभव है यीशु को यदि इस चरनी में रखा गया है तो यह चट्टान, यह पत्थर हो सकता है जिसमें एक छेद किया गया हो और फिर उन्होंने वहां अनाज डाला होगा और यही मवेशी या मवेशी हैं बाहर खा लिया होगा। इसलिए एक बार फिर हम अक्सर जब यीशु को चरनी में रखे जाने का संदर्भ देते हैं तो वह कैसा दिखता था इसकी विस्तृत तस्वीरें होती हैं, लेकिन यह शायद बहुत अधिक अपमानजनक और बहुत अधिक अपमानजनक होता। यदि यह घर के किनारे कोई छोटा सा स्थान है तो फिर से मैरी यीशु को जन्म देने के लिए एकमात्र शांत और निजी स्थान पा सकती थी, और यदि उसे शायद इस पत्थर में रखा गया होता तो एक छेद वाली यह बड़ी चट्टान इसमें खुदा हुआ यही वह एकमात्र स्थान है जहां उन्हें यीशु को रखने के लिए पाया गया था। तो वैसे भी मुद्दा यह है कि अक्सर जब हम पाठ के पास जाते हैं तो हमें इस तथ्य से अवगत होना चाहिए कि हम अक्सर अपनी धारणाओं के साथ उन तक पहुंचते हैं। कभी कभी वे अघोषित होते हैं। कभी कभी हमारी धारणाएं अवचेतन होती हैं। हम इस बात से अवगत नहीं हैं कि हमारी पृष्ठभूमि हमारे व्याख्या करने के तरीके को कैसे प्रभावित कर रही है। अन्य समय में हम चीजों को इस दृष्टि से पढ़ रहे हैं कि हमें उन्हें पढ़ना कैसे सिखाया गया है, हमारे चर्चों ने हमें कैसे सिखाया है, हम कैसे बड़े हुए हैं। कभी कभी हमारी अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और हमारे अपने अनुभव हमारे पाठ पढ़ने के तरीके को प्रभावित करते हैं, और यह आवश्यक है। यह बुरा नहीं है और यह गलत नहीं है, यह सिर्फ हकीकत है। लेकिन हमें इस तथ्य से अवगत होने की जरूरत है कि ऐसा हो रहा है, और हमें पाठ को पढ़ने और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और धार्मिक और ऐतिहासिक और राजनीतिक और जलवायु और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। हमें ऐसा करने की जरूरत है, हमारी धारणाओं को चुनौती दें और किसी पाठ को पढ़ने के तरीके को चुनौती दें, और शायद हमें इसे एक अलग नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करें। तो बस यह महसूस करें कि मेरी राय में कोई भी किसी भी चीज की पूरी निष्पक्षता के साथ व्याख्या नहीं कर सकता है। यह धारणा कि किसी भी तरह आप और मैं एक सूखे स्पंज हैं जो हमारे पूर्वाग्रहों से मुक्त बिना किसी बाधा के और अनफिल्टर्ड डेटा को निष्पक्ष रूप से सोखने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, बिल्कुल झूठ है। यदि आप सिर्फ एक कोरा स्पंज होते तो आप कुछ भी नहीं समझ पाते। यह हमारा अनुभव और ज्ञान है जो हमें चीजों को समझने में मदद करता है। साथ ही हमें इस बात से अवगत होना चाहिए कि यह हमारे पढ़ने के तरीके को प्रभावित करता है, और पवित्र शास्त्र के पाठ को हमारे सोचने के तरीके और इसे पढ़ने के तरीके को चुनौती देने और बदलने दें, इसे प्रकाश में समझने का प्रयास करें। जिस तरह से ईश्वर ने इसका इरादा किया था और जिस तरह से पहले मानव लेखकों ने इसका इरादा किया था, उसकी रोशनी में, उनकी संस्कृति और उनकी पृष्ठभूमि के प्रकाश में, न कि सबसे पहले हमारी संस्कृति के प्रकाश में। अब यह हमें एक अन्य मुद्दे की ओर ले जाता है, क्रिसमस की कहानी को दोबारा बताए जाने से पहले वाले अनुभाग का बैकअप लेना। इसका मतलब क्या है? न्यू टेस्टामेंट को आलोचनात्मक ढंग से पढ़ने का क्या मतलब है? हम में से अधिकांश जब हम यह सुनते हैं तो बाइबल पढ़ने को आलोचना के साथ जोड़ने से कतराते हैं, यानी बाइबल को आलोचनात्मक रूप से समझना, या शायद जब आप अपनी नई टेस्टामेंट परिचय पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं तो आपको आलोचना के विभिन्न तरीकों से परिचित कराया जाता है, जैसे ऐतिहासिक आलोचना और पाठ्य आलोचना और पुनर्लेखन आलोचना, स्रोत आलोचना। वे नए नियम की व्याख्या करने के विभिन्न दृष्टिकोणों के लिए अलग अलग लेबल हैं। और सवाल यह है कि ईसाई होने के नाते जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि बाइबल कुछ अर्थों में ईश्वर का शब्द है, आलोचनात्मक तरीके या आलोचनात्मक दृष्टिकोण क्या स्थान रखते हैं, नए नियम को पढ़ने में इसकी क्या भूमिका हो सकती है, या ईसाई होने के नाते क्या हमें इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए? तो सबसे पहले बाइबल को आलोचनात्मक ढंग से पढ़ने का क्या मतलब है? समस्या यह है कि हम उस शब्द को कैसे परिभाषित करते हैं, क्योंकि आमतौर पर जब हम आलोचना शब्द सुनते हैं या किसी चीज की आलोचना करते हैं तो आमतौर पर हमारे दिमाग में क्या आता है, या हम इस संदर्भ में क्या सोचते हैं कि इसमें क्या शामिल है या वह कैसा दिखता है। तो यदि आप आलोचनात्मक शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? संशयवादी, संशयवादी। इसलिए नए नियम के प्रति एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण वह है जो इस पर संदेह करेगा, और कुछ बहुत अधिक शाब्दिक, इसे देखने का एक बहुत ही अलग तरीका। किसी और को? हाँ, बहुत विश्लेषणात्मक पाठ को समझने में आपकी मदद करने के लिए अन्य सामग्री और अन्य स्रोतों का उपयोग करना। तो आप आलोचना को देखने के उन तीन बिल्कुल अलग तरीकों को देखते हैं। आमतौर पर समस्या यह है कि जब हम आलोचना के बारे में सोचते हैं, तो हम अक्सर संदेहपूर्ण या विनाशकारी के पहले उल्लेख के बारे में सोचते हैं। इसलिए एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण वह है जो संदेह करने, इनकार करने, संदेह करने या कमजोर करने और सवाल उठाने की कोशिश करने के मामले में महत्वपूर्ण है। और वास्तव में बाइबल के प्रति बहुत सारे आलोचनात्मक दृष्टिकोण का इससे अधिक कोई मतलब नहीं है। फिर भी इसे देखने का एक और तरीका है। आलोचना में किसी पाठ को देखना, उसका विश्लेषण करना या नए नियम के पाठ का विश्लेषण करना भी शामिल है, ताकि उन्हें अधिक सही ढंग से समझा जा सके और हम ऐसा क्यों सोचते हैं इसका औचित्य और कारण प्रदान किया जा सके। तो उस संबंध में आलोचना का विपरीत अधिक ईश्वरीय या पवित्र होना नहीं है। आलोचना का विपरीत होगा भोला होना और बिना कोई कारण बताए किसी बात को स्वीकार कर लेना। इसलिए जब हम उस दृष्टिकोण से बाइबल की आलोचनात्मक दृष्टि से देखने की बात करते हैं, तो मुझे आशा है कि हम सभी नए नियम के आलोचक बनना सीखेंगे। इसे कमजोर करने या संदेह करने के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि पाठ के प्रश्न पूछने और यह पूछने के दृष्टिकोण से कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं। ऐसा क्यों है कि मुझे लगता है कि इस पाठ का यही अर्थ है? या मुझे क्यों लगता है कि नया नियम ऐसा कहता है? और इसे समझने के लिए औचित्य और कारण प्रदान करना, जो फिर से यही कारण है कि हम ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि को देख रहे हैं, ताकि हमें पाठ में लाने के लिए सामग्री और पृष्ठभूमि देने का प्रयास किया जा सके। हमें इसे बेहतर और पूरी तरह से समझने में मदद करने के लिए। और इसलिए इस कक्षा में जब हम आलोचना के विभिन्न तरीकों के बारे में बात कर सकते हैं, तो उम्मीद है हम इसे समझेंगे, विनाशकारी होने और संदेह करने और इनकार करने और संदेह करने के संदर्भ में नहीं, हालांकि यह ऐसा कर सकता है, लेकिन अधिक की तर्ज पर हमारे द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के लिए औचित्य और कारण प्रदान करना। अर्थात किसी चीज को केवल इसलिए पकड़कर रखना नहीं कि मुझे लगता है कि यही तरीका है या मुझे इसी तरह सिखाया गया है, बल्कि इन कारणों से या औचित्य प्रदान करने के लिए भी। उस दृष्टिकोण से भी एक प्रश्न या आलोचना जो मैं अक्सर छात्रों से सुनता हूँ वह यह है कि कॉलेज में न्यू टेस्टामेंट को समझना आसान है या बाइबल को पाठ्य पुस्तक की तरह समझना आसान है। मुझे पूरा यकीन नहीं है कि यह बुरी बात है। मैं वास्तव में सोचता हूं कि यह एक अच्छी बात है। यह आवश्यक और वांछनीय है क्योंकि यह दर्शाता है कि हम गंभीरता से सोच रहे हैं। यह दर्शाता है कि हम एक ऐसे दस्तावेज के संपर्क में आ रहे हैं जो हमसे बहुत अलग है, जो एक बहुत ही अलग जगह और एक अलग वातावरण में तैयार किया गया था। और इसका समाधान बाइबल को पाठ्य पुस्तक की तरह मानना बंद करना नहीं है। समाधान यहीं रुकना नहीं है, बल्कि कक्षा में हम जो सीखते हैं उसे अपने भक्तिपूर्ण जीवन में, अपनी पूजा में, पवित्र शास्त्र के अपने व्यक्तिगत पढ़ने में एकीकृत करने के लिए कड़ी मेहनत करना है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह तरीकों और चीजों के प्रकार पर आधारित है। हम कक्षा में सीखते हैं तो फिर उम्मीद है कभी कभी बाइबल एक पाठ्य पुस्तक की तरह प्रतीत होगी और यह स्वाभाविक और वांछनीय है। लेकिन समस्या यह है कि यह समस्या नहीं है। समस्या यह है कि अगर हम यहीं रुक जाते हैं और इसे अपने जीवन में आज के सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवेश में, जिसमें हम खुद को पाते हैं, एकीकृत करने का कठिन काम करने में असफल हो जाते हैं। अब इससे पहले कि हम चारों ओर चक्कर लगाएं और उम्मीद करें कि हम स्वयं दस्तावेजों की जांच करने के करीब और करीब पहुंचें, इससे पहले कि हम ऐसा करें, एक और मुद्दा एक तरह से अधिक सामान्य और वह यह है कि हमें अपना नया नियम कैसे मिला। और वास्तव में एक पूरी कक्षा संभवतः उस मुद्दे को संबोधित करने के लिए समर्पित हो सकती है। लेकिन ऐसा कैसे है कि जो दस्तावेज अब हमारे पास हैं, मैथ्यू से प्रकाशित वाक्य तक जो हमारी बाइबल का हिस्सा हैं, हम उस तक कैसे पहुंचे? या वे पुस्तकें न्यू टेस्टामेंट के रूप में हमारे पास कैसे आईं? यह स्वीकार करते हुए कि वास्तव में पहली शताब्दी में न्यू टेस्टामेंट जैसे कई अन्य दस्तावेज थे, केवल किताबें ही नहीं लिखी गई थीं। न्यू टेस्टामेंट के समय के दौरान और उसके बाद तक कई दस्तावेज लिखे गए थे। तो ये 27 दस्तावेज मैथ्यू से रहस्योद्घाटन तक नए नियम में कैसे शामिल हो गए? और फिर इसके बारे में मेरा व्यवहार बहुत ही सरसरी होगा और यह सिर्फ आपको एक व्यापक परिप्रेक्ष्य और यह समझने के लिए है कि यह कैसे घटित हुआ। शुरुआती बिंदु स्पष्ट रूप से यह तथ्य है कि अभी के लिए मान ले कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक नए नियम में लिखी गई अंतिम पुस्तक थी। इस तथ्य को याद रखें कि यह अंतिम आती है, इसलिए नहीं कि यह आवश्यक रूप से अंतिम बार लिखी गई थी। नया नियम तार्किक रूप से व्यवस्थित है। इसे किताबें लिखे जाने के क्रम में व्यवस्थित नहीं किया गया है, इसे तार्किक रूप से व्यवस्थित किया गया है। और इसलिए रहस्योद्घाटन तार्किक रूप से अंतिम आता है। लेकिन यह शायद कालानुक्रमिक था कि जॉन के सुसमाचार में से एक शायद आखिरी था, उन दोनों में से कोई एक आखिरी लिखा गया होगा। अब आइए एक पल के लिए मान लें कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी गई अंतिम पुस्तक थी। जॉन द्वारा प्रकाशित वाक्य लिखने के बाद चर्च अगले दिन अपनी गोद में नया नियम लेकर नहीं उठा। प्रकाशित वाक्य को नए नियम के दस्तावेजों की एक सूची के साथ लिखे जाने के अगले दिन भी वे नहीं उठे, जिन्हें वे नया नियम कहते थे। वास्तव में फिर से हमने कक्षा के पहले दिन ही देखा, न्यू टेस्टामेंट कोई ऐसा शब्द नहीं था जिसे कुछ समय बाद तक, जिसे हम न्यू टेस्टामेंट कहते हैं, उस पर लागू किया गया था। इसलिए चर्च अपनी गोद में बाइबल नया नियम लेकर नहीं उठा। उनके पास पहले से ही पुराना नियम था। आपको यीशु के कानून और पैगंबरों या कानून और पैगंबरों के लेखन और पुराने नियम के ग्रंथों और नए नियम के लेखकों द्वारा पुराने नियम के सभी ग्रंथों को उद्धृत करने के उद्धरणों को देखने के लिए गॉस्पेल में बहुत दूर तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चर्च पहले से ही एक बाइबल लेकर आया था जिसे हम ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, हालांकि उन्होंने इसे जरूरी नहीं कहा होगा। लेकिन इस चीज के बारे में क्या जिसे हम नया नियम कहते हैं? यह कहां से आया था? फिर यह निश्चित रूप से आसान होता यदि ईश्वर ने केवल उन पुस्तकों की एक सूची प्रदान की होती। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें नए नियम में शामिल करें, लेकिन उन्होंने उस तरह से काम नहीं किया। इसके बजाय आप जो देख रहे हैं वह यह है कि नए नियम को निर्धारित करने की प्रक्रिया वास्तव में काफी लंबी और लंबी थी। और यह मोटे तौर पर चौथी शताब्दी तक नहीं था कि हमारे पास चौथी शताब्दी है और अंततः हमारे पास नए नियम की पूरी सूची का संदर्भ है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान ने वास्तव में बहस की एक ऐतिहासिक और सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से काम किया और वास्तव में चर्च के सदस्यों के बीच यह तय किया कि वे किन दस्तावेजों को आधिकारिक धर्मग्रंथ के रूप में स्वीकार करेंगे। अब कहने वाली पहली बात यह है कि चर्च के पास एक नया टेस्टामेंट है। फिर से मैं न्यू और ओल्ड टेस्टामेंट शब्दों का उपयोग सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वे उपयोग करने के लिए सामान्य शब्द हैं और मुझे एहसास है कि उन्हें पहले यही नहीं कहा जाता था। शतक उनके पास अभी तक कोई नया टेस्टामेंट नहीं था और संभवतः उन्होंने दूसरे टेस्टामेंट को हमारा पुराना टेस्टामेंट नहीं कहा होगा, उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट नहीं कहा होगा। लेकिन फिर इसका औचित्य क्या था? यदि उनके पास वह था जिसे हम पुराना नियम कहते हैं, तो उन्हें नए नियम की आवश्यकता क्यों थी? लेखों के एक अतिरिक्त समूह का क्या औचित्य है? खैर, फिर से ऐसा लगता है कि इसका कारण यह है कि जैसा कि हमने पहले दिन फिर से देखा, पुराने और नए नियम के बीच का संबंध वादा और पूर्ति में से एक है। पुराना नियम उस दिन की आशा करता है जब ईश्वर एक नई वाचा स्थापित करेगा जहां वह अपने लोगों को बहाल करने के लिए एक उद्धारकर्ता, एक मसीहा भेजेगा और नई वाचा स्थापित करने के लिए एक वाचा को फिर से स्थापित करेगा, क्योंकि पुरानी वाचा विफल हो गई थी, या बल्कि इसराइल इसके तहत विफल हो गया था। पुरानी वाचा। पुराने नियम के भविष्यवक्ता एक ऐसे समय का वादा करते हैं जब परमेश्वर अपने लोगों को पुनर्स्थापित करेगा और एक नई सृष्टि लाएगा। वह अपने उद्धारकर्ता एक मसीहा को भेजेगा जो दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा और जो एक नई वाचा स्थापित करेगा और अपने लोगों के साथ एक नई वाचा का उद्घाटन करेगा। अब इसमें यीशु मसीह ही वह है जो इसे पूरा करता है। यह स्वाभाविक है कि जैसे लेखों का एक समूह था जो पुरानी वाचा में भगवान को अपने लोगों के साथ व्यवहार करने की गवाही देता था, यह उस पुरानी वाचा धर्म ग्रंथ में भी स्वाभाविक है, जिसे हम कहते हैं पुराना नियम। इसमें एक ऐसे समय की आशा है जब ईश्वर एक मसीहा के तहत अपने एकत्रित और बहाल किए गए लोगों के साथ एक नई वाचा स्थापित करेगा। यह स्वाभाविक है कि वे लेख जो मसीह में पूरी हुई उस नई वाचा की गवाही देते हैं, उन्हें भी पुरानी वाचा के साथ धर्मग्रंथ माना जाएगा। धर्मग्रंथ। तो नया नियम केवल एक परिशिष्ट नहीं है, यह किसी प्रकार का एड ऑन नहीं है, यह वास्तव में पुराने नियम के धर्मग्रंथ का चरमोत्कर्ष और पूर्ति है। पुनः यह लेखों का एक समूह है जो पुराने नियम की तरह ही ऐसे लेखन हैं जो इसराइल के साथ व्यवहार करने वाली परमेश्वर की पुरानी वाचा की गवाही देते हैं। अब यह मसीह में एक नई वाचा के उद्घाटन और यीशु के आगमन के साथ पूरी हो गई है। मसीहा। यह स्वाभाविक है कि जो दस्तावेज इसकी गवाही देते हैं उन्हें भी आधिकारिक धर्म ग्रंथ के साथ साथ माना जाएगा। अब कैनन शब्द का क्या अर्थ है? शाब्दिक रूप से, और मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या आपकी पाठ्य पुस्तक इस बारे में बात करती है, कैनन शब्द का शाब्दिक अर्थ रीड होता है, इसलिए हम युद्ध के कार्यान्वयन कैनन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ग्रीक शब्द का अर्थ रीड होता है, और विस्तार से आप देख सकते हैं कि उस रीड का उपयोग चीजों को मापने के लिए किया जाता होगा। रीड का एक निश्चित खंड माप की इकाई के रूप में एक पैमाना की तरह कार्य करता होगा। इसके अलावा विस्तार से कैनन शब्द तब मापे गए लेखों के संग्रह को संदर्भित कर सकता है। इसलिए जब हम न्यू टेस्टामेंट कैनन का उल्लेख करते हैं तो हम आधिकारिक लेखन के संग्रह का उल्लेख कर रहे हैं, लेखन का एक संग्रह जो मानदंडों को पूरा करता है या पूरा करता है, आधिकारिक धर्म ग्रंथ माने जाने के लिए मां। न्यू टेस्टामेंट कैनन से हमारा तात्पर्य बस इतना ही है, लेखों का समूह जो ईश्वर के लोगों के लिए आधिकारिक धर्म ग्रंथ के रूप में कार्य करता है। अब यह कहां से आया? फिर यह कैसे सामने आया? हाल ही में एक दृश्य का लगातार पुनरुत्थान हुआ है, और इसे कुछ समय पहले ही दाविंची कोड के निर्माण के साथ एक बहुत लोकप्रिय अभिव्यक्ति मिली है। आप में से कुछ ने इसे पढ़ा है, और मुझे यकीन है कि हम में से अधिकांश इससे आगे निकल चुके हैं और अन्य चीजों पर, लेकिन कुछ साल पहले जब डैन ब्राउन ने दाविंची कोड लिखा तो इसने वास्तव में न्यू टेस्टामेंट के कुछ विद्वानों के बीच एक काफी सामान्य दृष्टिकोण को लोकप्रिय बना दिया, और वह आधिकारिक लेखन के एक समूह का विचार है। एक कैनन वास्तव में बहुत बाद तक सामने नहीं आया। प्रारंभिक चर्च की पहली दो या तीन शताब्दियों में ईसाई धर्म की छत्रछाया में दस्तावेजों की विविधता और धार्मिक दृष्टिकोण की विविधता थी, और उनमें से किसी को भी सही नहीं माना गया था। वे सभी एक तरह से प्रतिस्पर्धा करते थे और ध्यान आकर्षित करने की होड़ करते थे, और यह वास्तव में तब तक नहीं था जब तक कि चौथी शताब्दी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने यह तय नहीं कर लिया था कि कौन सी किताबें, क्या हर कोई इससे सहमत होगा। जिस तरह से दा विंची ने इसे वाक्यांशबद्ध किया है वह सारहीन है, और निश्चित रूप से वह एक काल्पनिक लिख रहे थे वैसे भी बुक करें, लेकिन यह काफी सामान्य परिप्रेक्ष्य है। कुछ समय बाद तक ऐसा नहीं हुआ कि चर्च के सबसे शक्तिशाली समूह ने निर्णय लिया कि ईसाई धर्म कैसा दिखेगा, और यहाँ वे दस्तावेज हैं जिन्हें हम धर्मग्रंथ के रूप में मानेंगे, और बाकी सब कुछ एक तरह से इसके अंतर्गत बह गया था गलीचा। और यह एक आम अवधारणा का काफी लोकप्रिय दृष्टिकोण है कि पहली दो तीन शताब्दियों में ईसाई धर्म बहुत विविध और यहाँ तक कि प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण भी था। लेखों के किसी एक समूह को धर्मग्रंथ नहीं माना जाता था। बहुत सारे अलग अलग लेख थे, और फिर कुछ समय बाद तक ऐसा नहीं हुआ कि मूल रूप से विजेता जीते। विजेताओं ने निर्धारित किया कि ईसाई धर्म कैसा दिखता है। हालांकि नए नियम के कुछ साक्ष्यों को देखने पर ऐसा लगता है कि यद्यपि चर्च किसी सिद्धांत के साथ नहीं जागा, प्रकाशित वाक्य लिखे जाने के अगले दिन उनके पास लेखों की एक अच्छी तरह से बनाई गई सूची थी, और इसके बजाय उसने वास्तव में एक ले लिया। नए नियम की सीमा निर्धारित करने के लिए लगभग 300 और वर्षों की प्रक्रिया, जिन दस्तावेजों को चर्च अब धर्मग्रंथ के रूप में समझता है, यह कहना सही नहीं है कि वह प्रक्रिया केवल बाद में हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ मामलों में यह पहले से ही चल रहा था। उदाहरण के लिए, यह आपके नए नियम के दस्तावेजों में से एक दो पत्रस के पत्र से आता है, और यहाँ दो पत्रस क्या कहता है, और दो पत्रस ने संभवतः पॉल प्रेरित पॉल के जीवन के बाद अच्छी तरह से लिखा है। पीटर कहते हैं, इसी तरह हमारे प्रिय भाई पॉल भी, जो संभवतः शहीद हो चुके हैं और इस समय तक उन्हें मौत की सजा दी जा चुकी है, हमारे प्रिय भाई पॉल ने उन्हें दिए गए ज्ञान के अनुसार आपको लिखा है, जैसा कि वह अपने सभी पत्रों में बोलते हैं। उनमें कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें समझना मुश्किल है। खैर, यह आरामदायक है। यदि पीटर को इसे समझने में कठिनाई हो रही थी, तो शायद मुझे लापरवाह न होने और प्रयास न करने के लिए क्षमा किया जा सकता है, लेकिन कम से कम अगर मुझे कुछ चीजें कठिन लगती हैं। लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिन्हें समझना कठिन है, जिन्हें अज्ञानी अन्य धर्मग्रंथों की तरह तोड़मरोड़ कर पेश करते हैं। अब दो बातें जो इसके बारे में दिलचस्प हैं। नंबर एक, क्या पीटर पहले से ही फिर से यह लिखा हुआ है? उसके पत्र की तारीख अलग अलग है, लेकिन यह पहली शताब्दी के अंत से काफी पहले लिखा गया है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से कुछ समय पहले लिखा गया है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि पॉल की मृत्यु के कुछ ही समय बाद पीटर को पहले से ही पॉल के पत्रों के एक समूह के बारे में पता चल गया है जो प्रसारित हो रहे हैं। वह हमें यह नहीं बताता कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके बारे में वह जानता है। वह हमें पॉल के पत्रों के इस संग्रह की सीमा नहीं बताता है। वह यह नहीं बताता कि उन्हें कौन जानता है या वे कितने व्यापक रूप से फैले हुए हैं, लेकिन वह मानता है कि उसके पाठक पीटर और कम से कम उसके पाठक पत्रों के एक समूह के बारे में जानते हैं जो पॉल ने पहले से ही लिखा था। और फिर यह बहुत पहले की बात है, यह पहली शताब्दी के अंत से पहले की बात है, 20, 30, 40 साल या उसके आसपास, कुछ इसी तरह। दूसरी बात यह है कि पीटर उनकी तुलना अन्य धर्म ग्रंथों से करता प्रतीत होता है। नए नियम में शास्त्र या लेख शब्द लगभग एक प्रकार का तकनीकी शब्द बन गया है, पूरी तरह से नहीं, बल्कि पुराने नियम को संदर्भित करने वाला एक शब्द है। इसलिए पीटर को पॉल के पत्रों के एक समूह के प्रसारित होने के बारे में पता है, और वह स्पष्ट रूप से उन्हें धर्मग्रंथ के साथ जोड़ रहा है। वह उन्हें कुछ हद तक पुराने नियम के धर्मग्रंथ के समान स्तर पर देखता है। अब पीटर हमें यह बताने से बहुत दूर है कि ओह, अब हमारे पास एक नया कैनन है जिसे हम पुराने नियम के साथ बना रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से वह पॉल के लेखों और पत्रों के एक समूह को पहले से ही उभरता हुआ देखता है जिसे पुराने नियम के साथ माना जा सकता है। दूसरी बात जो मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा वह यह है कि हालांकि न्यू टेस्टामेंट के लेखकों को अधिकांश भाग में लेखों के एक समूह के बारे में जानकारी नहीं है, जिसे वे ओल्ड टेस्टामेंट की तरह ही न्यू टेस्टामेंट कहने जा रहे हैं। संकेत हैं, कम से कम उनमें से कुछ में कुछ लेखक संकेत देते हैं कि वे कुछ ऐसा लिख रहे हैं जिसे आधिकारिक ग्रंथ माना जाएगा। उदाहरण के लिए मुझे लगता है कि इसका एक उदाहरण प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है जो अध्याय 22 और छंद 18 और 19 में समाप्त होती है। लेखक समाप्त करता है, मैं हर किसी को चेतावनी देता हूं जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी के शब्दों को सुनता है, इसलिए जॉन केवल उसका जिक्र कर रहा है, पुस्तक संपूर्ण नया नियम नहीं। यदि कोई उनमें कुछ जोड़ता है तो परमेश्वर उस पर पुस्तक में वर्णित विपत्तियां बढ़ा देगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक के शब्दों में से कुछ निकाल दे तो परमेश्वर जीवन के वृक्ष में से उसका भाग छीन लेगा। अब मैं जिस चीज पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह है जोड़ने और हटाने वाले शब्द, और यदि आप शब्द में जोड़ते हैं या शब्द से हटाते हैं तो एक अभिशाप होता है, वह भाषा है जो पुराने नियम के कानून से आती है। और इसलिए यह ऐसा है मानो जॉन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पुराने नियम के कानून के समान अधिकार के स्तर के रूप में देखता है, अर्थात एक अभिशाप था जैसा कि पुस्तक में सच था। यह भाषा व्यवस्था विवरण से निकलती है परमेश्वर के वचन में जोड़ने या घटाने के लिए। जॉन यह सीधे व्यवस्था विवरण की पुस्तक से आता है, और वहां यदि आप मूसा के कानून में जोड़ते या घटाते थे तो एक शाप था और उसका पालन करने के लिए एक आशीर्वाद था। अब जॉन उसी भाषा को अपने दस्तावेज पर लागू करता है। दूसरे शब्दों में ऐसा लगता है कि जॉन को पता है कि वह पुराने नियम के धर्म ग्रंथ के समान स्तर पर कुछ लिख रहा है। तो फिर यह बिल्कुल सच नहीं है कि पहली शताब्दी में किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि धर्म ग्रंथ क्या है। बाद में कई सदियों बाद तक यह एक तरह से सभी के लिए मुफ्त था, लेकिन पहले से ही कुछ लेखक सोचते हैं कि वे पुराने नियम की तर्ज पर कुछ लिख रहे हैं। एक और दिलचस्प पाठ प्रेरित पॉल है, जिसके पत्र न्यू टेस्टामेंट का बड़ा हिस्सा है, कम से कम दस्तावेजों या लेखों की संख्या के मामले में। उनके दस्तावेजों में से एक में 1 कुरिन्थियों 14 खंड है, जिसे हम उस पुस्तक के पास आने पर अधिक विस्तार से देखेंगे। लेकिन यह एक ऐसा खंड है जहां पॉल चर्च को निर्देश दे रहा है कि वे आध्यात्मिक उपहारों का दुरुपयोग कैसे कर रहे हैं। जब वे आराधना के लिए एकत्रित होते हैं तो वे आध्यात्मिक उपहारों, विशेषकर भाषाओं का दुरुपयोग करते हैं, और पॉल अब उन्हें बता रहा है कि उन्हें इसे कैसे ठीक करना चाहिए। और जब वे पूजा के लिए इकट्ठा होते हैं तो उन्हें आध्यात्मिक उपहारों का उपयोग कैसे करना चाहिए। और पॉल पद 37 और उसके बाद में बहुत दिलचस्प बात कहता है। ध्यान दें कि उसका अंत कैसे होता है। यह आध्यात्मिक उपहार देने के उनके निर्देशों के अंत में है, और वह कभी भी पुराने नियम को उद्धृत नहीं करता, भले ही वह इसका उल्लेख कर सकता है। मुझे यह नहीं कहना चाहिए कि वह इसे उद्धृत नहीं करता। वह पहले अध्याय 14 में एक स्थान पर ऐसा करता है, लेकिन वह मूल रूप से केवल अपना निर्देश दे रहा है। यही वह है जो मैं चाहता हूं कि आप करें। और यहां बताया गया है कि वह अध्याय को कैसे समाप्त करता है। जो कोई भविष्यवक्ता होने या आध्यात्मिक शक्तियां होने का दावा करता है उसे यह स्वीकार करना चाहिए कि जो मैं तुम्हें लिख रहा हूं वह प्रभु का आदेश है। जो कोई इसे नहीं पहचानता उसे पहचाना नहीं जाना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि पॉल अपने निर्देशों की तुलना प्रभु की आज्ञा से करता है। उसने कैसे सोचा कि वह यह नहीं बताता कि यह किसी प्रकार का रहस्योद्घाटन था, या वह नहीं बताता, लेकिन फिर भी पॉल सोचता है कि उसके स्वयं के निर्देश आधिकारिक हैं और पुराने नियम की तरह ही सुने और माने जाने चाहिए। इसलिए पॉल और अन्य लेखक बहुत पहले से ही, कम से कम उनमें से कुछ, सभी नहीं, सभी नए नियम के लेखक नहीं, लेकिन कुछ को यह पता चल रहा है कि वे सामान्य रोजमर्रा के संचार से कहीं अधिक कुछ लिख रहे हैं, लेकिन कुछ इसे ईश्वर के प्रेरितों में से किसी एक या ईश्वर के प्रवक्ता या पुराने नियम के अधिकार के साथ लिया जाना चाहिए। तो पहला पड़ाव बिंदु यह है कि नए नियम के भीतर भी एक उभरती हुई प्रकार की कैनन चेतना के बारे में जागरूकता प्रतीत होती है कि कम से कम लेखों के एक समूह की चेतना है जो आधिकारिक धर्मग्रंथ के रूप में कार्य करेगी। अगला पड़ाव बिंदु, फिर से मैं बहुत व्यापक ब्रशस्ट्रोक चित्रित कर रहा हूँ, मार्सियन नाम का एक व्यक्ति है। मार्सियन नाम का एक आदमी। मार्सियन ज्ञात था, वह एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति था जो न्यू टेस्टामेंट के लेखन के कुछ सौ साल बाद उभरा। मार्सियन ने मूल रूप से फिर से एक साथ रखने का फैसला किया। आप इस तरह के सवाल की कल्पना कर सकते हैं, ठीक है, चर्च किन दस्तावेजों में भगवान की आधिकारिक आवाज सुनेगा? हम किन दस्तावेजों को धर्मग्रंथ के रूप में मानेंगे जो उनके पुत्र यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर के नई वाचा के रहस्योद्घाटन की गवाही देते हैं? हम किन दस्तावेजों को उसका आधिकारिक गवाह मानेंगे? मार्सियन नाम के एक व्यक्ति ने उस प्रश्न का उत्तर दिया, और उसने ऐसा इस प्रकार किया। वह मूल रूप से बहुत बहुत ही सरलता से मार्सियन ने इस पर विश्वास किया। उसने सोचा कि पुराने नियम का परमेश्वर वही नए नियम का परमेश्वर नहीं है। उसने सोचा कि वे अलग थे। पुराने नियम का ईश्वर मूलतः न्याय और कानून का ईश्वर था। नए नियम का ईश्वर अनुग्रह और प्रेम का ईश्वर, कुछ ऐसा ही। और इसलिए क्या हुआ, जब मार्सियन ने नया टेस्टामेंट पढ़ा तो जो कुछ भी पुराने टेस्टामेंट जैसा लगता था उससे उसने छुटकारा पा लिया। उसने सोचा, ठीक है, यह योग्य नहीं है। नए नियम का ईश्वर प्रेम और अनुग्रह आदि का ईश्वर है। तो जो कुछ भी पुराने नियम जैसा लगता था उससे मार्सियन को छुटकारा मिल गया। और दिलचस्प बात यह है कि उसके पास बहुत ही सीमित कैनन या नए नियम के लेखन का संग्रह था। मुझे लगता है कि यह मूल रूप से ल्यूक और पॉल के पत्रों का बहुत संक्षिप्त और संशोधित संस्करण था। बाकी सब कुछ हटा दिया गया क्योंकि यह काफी हद तक पुराने नियम जैसा लगता था। इसलिए मार्सियन एक बहुत ही सीमित सिद्धांत लेकर आया। लेकिन उसके महत्वपूर्ण होने का कारण यह है कि अब इसके कई कारण हैं, लेकिन अब इस तरह की चीजों के कारण उस प्रश्न का उत्तर देना और भी अधिक आवश्यक हो जाएगा। खैर, चर्च किन दस्तावेजों को स्वीकार करेगा और आधिकारिक धर्म ग्रंथ मानेगा? हमारे पास जो पहला संदर्भ है, कम से कम एक मौजूदा संदर्भ, फिर से इसका मतलब यह नहीं है कि यह पहली बार है जब किसी ने इस बारे में सोचा है। इसका मतलब यह है कि यह पहला लिखित पाठ है जो उन 27 पुस्तकों की गवाही देता है जिन्हें हम आज पहचानते हैं। रहस्योद्घाटन के माध्यम से मैथ्यू एक प्रारंभिक चर्च पिता द्वारा लिखा गया था। याद रखें कि हमने चर्च के फादरों, उन चर्च नेताओं के बारे में बात की थी जो मूल रूप से दूसरी, तीसरी और चौथी शताब्दी के थे, और हमारे पास उनकी रचनाएं हैं। उनमें से कई के पास लेखों की प्रतियां हैं। आप उन्हें पढ़ सकते हैं, उनका अंग्रेजी अनुवाद। चर्च के पिताओं में से एक का नाम अथानासियस था। अथानासियस एक ऐसा नेता था जिसे हर साल चर्च को संबोधित करने की आदत थी, और चर्च से मेरा मतलब किसी इमारत में सिर्फ एक चर्च की बैठक नहीं है, बल्कि बड़े और व्यापक स्तर पर चर्च ईस्टर पत्र के साथ चर्च को संबोधित करता था। और उनके ईस्टर पत्रों में से एक, 367 ईस्वी में उनके ईस्टर पत्रों में से एक, उनके पत्रों में से एक, उन्होंने उन पुस्तकों के मुद्दे को संबोधित किया जिन्हें वे न्यू टेस्टामेंट के रूप में मानेंगे, या उन पुस्तकों को जिन्हें चर्च और फिर यह था न केवल उसका आदेश कि उन्हें क्या करना चाहिए। यह इस बात का सारांश है कि चर्च बड़े पैमाने पर नए नियम के रूप में क्या सोच रहा था और स्वीकार कर रहा था। उन्होंने कहा कि अथानासियस ने फिर कहा, हमें नए नियम की पुस्तकों का नाम बताने में संकोच नहीं करना चाहिए। वे इस प्रकार हैं, और फिर मैं इसे पढ़ने नहीं जा रहा हूं, लेकिन आप देख सकते हैं कि उसके पास चार गॉस्पेल अधिनियम हैं, और दिलचस्प बात यह है कि उसके आदेश पॉल के 14 पत्रों की तुलना में थोड़ा अलग हैं। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इसमें इब्रानियों को भी शामिल किया है। और फिर अंततः जॉन का सर्वनाश या रहस्योद्घाटन की पुस्तक, तो यह उन 27 पुस्तकों की पहली प्रमाणित सूची है जिन्हें अब हम न्यू टेस्टामेंट के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर इसका मतलब यह नहीं है कि यह पहली बार है जब किसी ने ऐसा सोचा हो। यह अभी लिखित रूप में सबसे पुराना प्रमाण है जिसका हमारे पास प्रमाण है। मैंने बाद में लगभग 30 साल बाद प्रारंभिक चर्च परिषदों में से एक का उल्लेख किया। प्रारंभिक चर्च में जैसे ही विभिन्न झूठी शिक्षाएं और विभिन्न समस्याएं और मुद्दे सामने आए, चर्च अक्सर इनमें से कुछ मुद्दों को सुलझाने के लिए परिषदें बुलाता था। और उनमें से एक में जिसे कार्थेज की परिषद कहा जाता है, कार्थेज की परिषद में अथानासियस की न्यू टेस्टामेंट की सूची के समान 27 पुस्तकें भी सूचीबद्ध हैं। इसलिए चौथी शताब्दी के अंत तक ऐसा प्रतीत होता है कि इस बात पर स्पष्ट सहमति बननी शुरू हो गई थी कि किन पुस्तकों को आधिकारिक ग्रंथों के इस समूह से संबंधित माना जाएगा, जिन्हें हम नया नियम कहते हैं, जो कि भगवान की नई वाचा की गवाही देते हैं। यीशु मसीह के व्यक्तित्व में रहस्योद्घाटन। फिर से जिस बात पर मैं जोर देना चाहूंगा वह दिलचस्प है कि भगवान ने बहस करने और काम करने और इस चीज को खत्म करने की एक बहुत ही मानवीय प्रक्रिया के माध्यम से काम करना चुना, बजाय इसके कि प्रकाशित वाक्य लिखे जाने के अगले दिन ही चर्च को जगा दिया जाए ऊपर और भगवान बस सूची को उनकी गोद में फेंक रहे हैं। क्या उन्होंने बहुत ही मानवीय प्रक्रियाओं के माध्यम से यह समझ और अवधारणा लाने के लिए काम किया है कि चर्च किन दस्तावेजों को आधिकारिक धर्मग्रंथ के रूप में मानेगा? मुझे लगता है कि आपके पाठ्यक्रम में एक दिलचस्प सवाल यह है कि वे इसे किस मानदंड से तय करेंगे। मेरा मतलब है, चर्च ने स्पष्ट रूप से कौन से मानदंड का उपयोग किया यह तय करने के लिए कि हम कौन से दस्तावेज स्वीकार करेंगे। और इसके बारे में कहने वाली पहली बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इसमें कोई पावर पॉइंट स्लाइड है। नहीं, मैं नहीं करता। यही कारण है कि मेरे पास वह मूंगफली कार्टून है जो मैं आपको बस एक क्षण में दिखाऊंगा। यह कोई दुर्घटना नहीं है, कम से कम मुझे आशा है कि ऐसा नहीं है। सबसे पहले चर्च स्पष्ट रूप से एक चेकलिस्ट की तरह काम नहीं करता था, और इसलिए वे मैथ्यू को लाए और वे सूची में नीचे चले गए। हाँ, यह 5 मानदंडों को पूरा करता है, हम इसे स्वीकार करेंगे। और वे मार्क को ले आए। हाँ, यह ठीक है। और फिर वे कुछ अन्य दस्तावेज लेकर आए। इसमें एक जोड़ा छूट गया, इसलिए हमें इसे बाहर फेंकना होगा। और उनके पास दस्तावेजों का यह ढेर था, और जो परीक्षण में उत्तीर्ण हुए वे सामने आ गए, और बाकियों को बाहर फेंक दिया गया। यह इस तरह से काम नहीं करता था। ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि वे चेकलिस्ट के साथ काम कर रहे थे और उनके विरुद्ध दस्तावेजों को माप रहे थे। साथ ही ऐतिहासिक रूप से हम जो जानते हैं वह यह है कि फिर भी ये दस्तावेज कुछ मानदंडों को पूरा करते प्रतीत होते हैं, या कम से कम एक निश्चित समझ पर खरे उतरते प्रतीत होते हैं। और कम से कम 3 थे, और भी हो सकते थे, लेकिन कम से कम 3 ऐसे हैं जिन पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक दस्तावेज को यह प्रतिबिंबित करना पड़ता है कि क्या इसे आधिकारिक धर्मग्रंथ माना जाएगा। पहला था अनुरूपता। यह एक दस्तावेज था जिसका अनुपालन होना चाहिए। शिक्षा को यीशु की शिक्षा और प्रेरितों की शिक्षा के अनुरूप होना चाहिए। इसे सुसमाचार के अनुरूप होना चाहिए। वहां पहले से ही था, नया नियम पढ़े। नए नियम के अस्तित्व में आने से बहुत पहले स्पष्ट रूप से सुसमाचार की एक अवधारणा थी जिसे प्रेरितों ने आगे बढ़ाया और प्रचार किया और सिखाया। इसलिए जो कुछ भी इसके अनुरूप नहीं है, जो कुछ भी इससे भटक गया है, उस पर संभवतः प्रश्नचिन्ह लगाया जाएगा। वे दस्तावेज जो इसकी गवाही देते हैं और इसके अनुरूप हैं, उन्हें धर्मग्रंथ माना जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण है सार्वभौमिक स्वीकृति, यानी चर्च को समग्र रूप से स्वीकार करना चाहिए, पहचानना चाहिए कि यह दस्तावेज धर्मग्रंथ है और इसमें मूल्य खोजना चाहिए। ऐसे दस्तावेज जो विशेष संप्रदायों या समूहों से निकलते प्रतीत होते हैं या केवल उनके द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, संभवतः स्वीकार नहीं किए जाएंगे। लेकिन वे दस्तावेज जो समग्र रूप से चर्च को मूल्यवान लगते हैं और आधिकारिक लगते हैं, और अंत में अधिकांश भाग के लिए एक दस्तावेज को यीशु के प्रेरितों में से किसी एक द्वारा लिखा जाना चाहिए या उनके सहयोगियों में से किसी एक द्वारा लिखा जाना चाहिए, तो जाहिर तौर पर पॉल या पीटर जैसे किसी व्यक्ति की किताब न्यू टेस्टामेंट में शामिल होने के लिए एक अच्छा उम्मीदवार होगी, या मार्क जैसे किसी व्यक्ति की किताब जो परंपरा के अनुसार पीटर का करीबी सहयोगी था या पीटर का दुभाषिया था, या ल्यूक जो पॉल का सहयोगी माना जाता है। इसलिए नए नियम के अधिकांश दस्तावेज किसी प्रेरित या उसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े किसी व्यक्ति द्वारा तैयार किए गए हैं। तो फिर केवल यह प्रदर्शित करने के लिए कि ऐसा लगता है कि बहुत पहले ही चर्च में लेखों के एक समूह की चेतना उभर आई थी जो मसीह में इस नई वाचा के रिश्ते की गवाही देती थी। यह नई वाचा का संबंध पुराने नियम द्वारा प्रत्याशित था, जिसका उद्घाटन अब मसीह में किया गया है, कि दस्तावेजों का एक समूह इसके आसपास विकसित होगा जो इसकी गवाही देता है, और इसके बारे में पहले से ही एक उभरती हुई चेतना है कि यद्यपि इसका अंतिम रूप सामने आने में लगभग 300 साल लग गए, फिर भी चर्च था। ऐतिहासिक रूप से यह हमेशा जानता था कि आधिकारिक धर्मग्रंथ खोजने और आवाज सुनने के लिए यह कहा जा सकता है भगवान उनसे बात करते रहें। और दिलचस्प बात यह है कि भगवान ने उन दस्तावेजों की मान्यता लाने के लिए एक बार फिर से इतिहास की मानवीय प्रक्रियाओं और तंत्रों के माध्यम से काम करना चुना, जिन्हें चर्च ने आधिकारिक धर्मग्रंथ के रूप में मान्यता दी थी। अब अगला सवाल यह है कि हम इसे कैसे पढ़ें या हम लेखों के इस समूह की व्याख्या कैसे करें जिसे हम न्यू टेस्टामेंट कैनन कहते हैं। इसे न्यू टेस्टामेंट कैनन कहने से खतरा यह है कि कोई इसे एक अखंड खंड के रूप में देखने के लिए प्रलोभित हो सकता है। इसका मतलब है फिर से नए नियम को मूल रूप से दस्तावेजों के एक समरूप समूह के रूप में मानना, जो काफी हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। आप उन्हें एक ही तरह से पढ़ते हैं, उनमें एक ही सामग्री होती है, और आप उन्हें बिना कोई भिन्नता या अंतर देखे बिना ही पढ़ लेते हैं। साथ ही जो अद्वितीय है, और मुझे लगता है कि यह न केवल ईश्वर की बुद्धि बल्कि चर्च की भी गवाही है, नए नियम के एक सिद्धांत को उसकी सारी समृद्धि और विविधता में संरक्षित करने की चर्च की इच्छा, यह तथ्य है कि यद्यपि हम नए होने का दावा करते हैं, टेस्टामेंट एक किताब है, साथ ही यह विभिन्न प्रकार के पाठ भी हैं जो न केवल विभिन्न मुद्दों और विषयों को संबोधित करते हैं जो अलग अलग समय पर लिखे गए हैं, बल्कि विविध साहित्यिक प्रकारों से युक्त हैं। मैंने हमेशा सोचा था कि रुकना और सोचना दिलचस्प होगा, जो हम नहीं करेंगे, लेकिन रुकना और सोचना दिलचस्प होगा। अगर भगवान ने 21वीं सदी में खुद को प्रकट करने का फैसला किया तो वह किस साधन का उपयोग करेंगे, साहित्यिक या अन्यथा, खुद को प्रकट करने के लिए? पहली शताब्दी में ईश्वर ने स्वयं को पहली शताब्दी की सामान्य और मानक साहित्यिक शैलियों या साहित्यिक प्रकारों के माध्यम से प्रकट किया। एक शैली है, यदि आप फ्रेंच बोलते हैं या फ्रेंच पढ़ते हैं, तो शैली का अर्थ एक प्रकार या प्रकार है। इसे अक्सर साहित्यिक आलोचना और बाइबल अध्ययन में साहित्य के प्रकारों पर विभिन्न प्रकार के साहित्य पर लागू किया जाता है, जिन्हें एक साथ समूहीकृत किया जा सकता है, क्योंकि वे बहुत व्यापक श्रेणियों का उपयोग करने के लिए पहचानने योग्य विशेषताओं जैसे कि पत्र या उपन्यास या कविताएं या इस तरह की चीजें साझा करते हैं। न्यू टेस्टामेंट के बारे में भी यही सच है। इसमें साहित्यिक प्रकारों की विविधता शामिल है और यही यह आता है। अब हम में से अधिकांश हम इसे देखते हैं और स्वचालित रूप से हम पहचानते हैं कि हम क्या देख रहे हैं। आप एक कार्टून देख रहे हैं। अधिक विशेष रूप से आप मूंगफली का कार्टून देख रहे हैं। अधिक विशेष रूप से मैं लिखित दस्तावेजों पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। संकेतक क्या हैं? बस यह दिखाने के लिए कि हर दिन आप शैली पर निर्णय कैसे लेते हैं, और यह आपके कुछ पढ़ने के तरीके की व्याख्या करता है, भले ही आप इसे करने के तरीके से अनजान हो। कौन सी विशेषताएं आपको स्पष्ट रूप से संकेत देती हैं कि आप किसी ऐतिहासिक वृत्तचित्र या खेल अखबार के खेल अनुभाग या किसी अन्य चीज के विपरीत एक कार्टून देख रहे हैं? फिर हम देखेंगे कि आप इसे कैसे समझते हैं, उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इस पाठ की विशेषताएं क्या हैं? आपको शायद सोचना होगा, क्योंकि फिर भी आप अवचेतन रूप से ऐसा करते हैं। आप रुक कर मत सोचिए, अब ये कार्टून इस वजह से है। आप बस पहचाने कि यह क्या है और आप इसमें शामिल हो जाएं, क्योंकि यह हमारे साझा सांस्कृतिक कोड और समझ का हिस्सा है। तथ्य यह है कि इसमें चित्रों के खंड, चित्रों का एक क्रम और इसे खींचा गया है। दूसरे शब्दों में, ये तस्वीरें नहीं हैं। ये किसी व्यक्ति की वास्तविक तस्वीरें नहीं हैं। वे व्यंग्यचित्र हैं या वे चित्र हैं जो खींचे गए हैं। फिर यदि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो शारीरिक रूप से इसके जैसा दिखता है, तो यह विचित्र होगा। हम मानते हैं कि कार्टून के लिए यह ठीक है। वे व्यंग्यचित्र हैं। तथ्य यह है कि आपके पास फ्रेमों के ये क्रम हैं जो गति को दर्शाते हैं। यह एक संकेत है कि आप एक कार्टून के साथ काम कर रहे हैं। और कुछ इस तथ्य के अलावा कि यह मूंगफली कहता है, हम मानते हैं कि यह एक प्रकार का कार्टून है। हाँ, तुम्हें बुलबुले मिल गए। इस तरह वे फ्रेम के शीर्ष पर शब्द बुलबुले द्वारा भाषण या विचार को चित्रित करते हैं। तो ये सभी चीजें हमें स्वचालित रूप से यह पहचानने में मदद करती हैं कि यह कार्टून की एक निश्चित साहित्यिक शैली से संबंधित है। अब समस्या न्यू टेस्टामेंट के साथ है। हम अक्सर साहित्यिक शैलियों से निपट रहे हैं जिनसे हम परिचित नहीं हैं। ये ऐसी शैलियां हैं जिन्हें पहले पाठकों ने समझा होगा और उनसे परिचित होंगे, लेकिन यह हमारे लिए थोड़ा अधिक विदेशी हो सकता है। यहां तक कि वे भी जिनकी हमारे समय से कुछ समानता है, जैसे कि पॉल के पत्र। हम में से अधिकांश लोग अभी भी पत्र पढ़ते और लिखते हैं, लेकिन पहली शताब्दी में पत्रों को अलग तरीके से एक साथ रखा गया होगा, या वे थोड़े अलग तरीके से काम करते होंगे, या उनके हिस्से हमारी आदत से अलग होंगे। इसलिए जब हम नए नियम को देखते हैं, तो हमें फिर से न केवल ऐतिहासिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि, धार्मिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बल्कि साहित्यिक संदर्भ को भी समझना होगा। समझें कि नए नियम के लेखक किस प्रकार की साहित्यिक विधाओं का उपयोग करते हैं, वे शैलियां जो उनके समय में आम थीं और जिनके बारे में हमारे जैसे अधिकांश लोगों ने बहुत अधिक नहीं सोचा होगा, लेकिन हमें इस बारे में अधिक जानबूझकर सोचना होगा कि साहित्यिक विधाएं क्या करती हैं, लेखक इसका उपयोग करते हैं, और यह किसी पाठ की व्याख्या करने के हमारे तरीके को कैसे प्रभावित करता है। और हम उसके कुछ उदाहरण देंगे। उदाहरण के लिए, मुझे विश्वास है कि रहस्योद्घाटन की पुस्तक को तब तक गलत समझा जाएगा जब तक आप यह नहीं समझ लेते, कम से कम आंशिक रूप से नहीं समझ लेते कि यह किस साहित्यिक शैली में संप्रेषित की गई थी और पहले पाठकों ने इसे कैसे समझा और समझा होगा। तो नए नियम की साहित्यिक विधाओं के लिए बुनियादी साहित्यिक प्रकार, फिर से पहला वह है जिससे हम में से अधिकांश लोग काफी परिचित हैं, फिर भी उनमें अभी भी ऐसी परंपराएं हो सकती हैं जो हमारे लिखने के तरीके से कुछ अलग हैं और आज कथा या कहानियां पढ़े। गॉस्पेल और एक्ट्स की पुस्तक, हालांकि मैं उन सभी को एक साथ नहीं रखना चाहता और यह नहीं कहना चाहता कि एक्ट्स और गॉस्पेल आवश्यक रूप से समान हैं, वे दोनों साहित्यिक प्रकार की कथा से संबंधित हैं, इसलिए हमें उन्हें व्यंजनों के रूप में या किसी प्रयोग के वैज्ञानिक विवरण और दस्तावेजों के रूप में नहीं एपिसोड या सीधे विवरण के रूप में पढ़ना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें कहानी के माध्यम से संवाद करने वाले लेखकों के रूप में पढ़ना होगा। मुझे विश्वास है कि जो लोग गॉस्पेल को सबसे अच्छी तरह से समझने में सक्षम हैं, वे अक्सर समझते हैं कि उपन्यास कैसे होते हैं और कथा और कहानी कैसे काम करती है। और जब आप समझते हैं कि एक कथा और कहानी कैसे काम करती है, यह कैसे संचार करती है, तो आप अक्सर सुसमाचार को बेहतर ढंग से समझने और पढ़ने में सक्षम होते हैं। फिर क्योंकि लेखक कहानी के माध्यम से संवाद करते हैं, मुख्य बात यह समझना है कि लेखक क्यों लिखते हैं। उन्होंने जो कहानियां बनाई, उन्हें एक साथ रखकर वे क्या करने का प्रयास कर रहे थे। दूसरे शब्दों में, यीशु ने जो कुछ कहा और किया, उसमें से लेखकों ने जो लिखा और जो किया उसे शामिल क्यों किया। जब आप मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन को पढ़ते हैं तो यह दिलचस्प होता है। उम्मीद है कि अब तक आप यह समझ चुके होंगे, उनमें से कोई भी आपको वह सब कुछ नहीं बताता जो यीशु ने कहा और किया। ल्यूक को छोड़कर उनमें से कोई भी आपको बचपन में यीशु के बारे में कुछ नहीं बताता, और ल्यूक केवल बहुत संक्षेप में कुछ कहता है। उनमें से अधिकांश सीधे उसके वयस्क मंत्रालय में कूद पड़ते हैं, और उनमें से केवल दो ही आपको उनके जन्म के बारे में बताते हैं। इसलिए सुसमाचार लेखक उस अर्थ में जीवनियां नहीं लिख रहे हैं जिससे हम परिचित हैं। वे पहली सदी की जीवनियां लिख रहे हैं जो चयनात्मक हो सकती हैं, अर्थात लेखकों मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन का एक इरादा था, एक धार्मिक इरादा था। वे मसीह के बारे में चर्च से कुछ कहना चाहते थे, कुछ मुद्दों को वे संबोधित कर रहे थे, और उन्होंने केवल उन घटनाओं को पूल से बाहर शामिल किया जानकारी की। उनके पास यीशु के जीवन, उनके जन्म, उनके जीवन, उनकी शिक्षाओं, उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में जो भी जानकारी थी, उन्होंने उस जानकारी को शामिल किया और इसे इस तरह से एक साथ रखा जिससे संचार हुआ और उनका उद्देश्य पूरा हुआ। जैसा कि हम देखेंगे, मेरी राय में इसीलिए हमारे पास चार सुसमाचार हैं। चर्च ने एक बड़े सुसमाचार का समामेलन क्यों नहीं किया? किसी ने वास्तव में चर्च में बहुत पहले ही यह प्रयास किया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी चार गॉस्पेल यीशु कौन हैं, इसके लिए पूरक लेकिन बहुत अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, और उनमें से किसी के बिना हम मसीह के बारे में अपनी समझ के संबंध में कुछ हद तक गरीब हो जाएंगे। इसलिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि गॉस्पेल आख्यान हैं, पहली शताब्दी की जीवनियों के मानकों के बाद लिखी गई कहानियां हैं। और फिर गॉस्पेल सामने आकर यह नहीं कहते कि तुम्हें यही करना चाहिए, बल्कि इसके बजाय वे एक कहानी सुनाकर इसे स्पष्ट करते हैं। वे कथा या कहानी के माध्यम से पढ़ाते हैं। कहानियों से अधिक परिचित होने का एक और अच्छा तरीका फिल्मों का विश्लेषण करना है। यदि आप विश्लेषण कर सकते हैं कि फिल्में कैसे काम करती हैं और वे अपनी बात कैसे संप्रेषित करती हैं, तो मुझे लगता है कि आप उपन्यास पढ़ने में बेहतर निपुण हो जाएंगे, दोहराव और संवाद जैसी चीजों के माध्यम से। फिर किसी कथा के लेखक सामने आकर आपको ठीक ठीक नहीं बताते, मैं यही कह रहा हूँ। वे एक कहानी सुनाकर ऐसा करते हैं। कहानी को समझने से संवाद, दोहराव उन अनुभागों के माध्यम से कथाएं कैसे काम करती हैं, जहाँ लेखक अधिक समय बिताता है वगैरह, और आप इसे अक्सर फिल्मों में देखते हैं। बहुत समय पहले नहीं, मुझे नहीं पता कि आप में से किसी ने इसे देखा था, बस यहाँ बहुत समय पहले नहीं, उन्होंने देखा था। मुझे लगता है कि यह माइकल जे फॉक्स की बैक टू द फ्यूचर फिल्मों की 25वीं वर्षगांठ थी। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने उन्हें देखा हो। सबसे पहली डेट वह पहली डेट थी जब मैं अपनी पत्नी के साथ बैक टू द फ्यूचर एक देखने गया था। और इसे देखना और यह देखना दिलचस्प है कि कहानी कैसे काम करती है। मुझे लगता है कि फिल्म जिस मुख्य विचार को सामने लाने की कोशिश कर रही है उसे कुछ बार दोहराया गया है, इसे संवाद में कुछ बार दोहराया गया है, खासकर फिल्म के अंत में, और फिर इसे कई दिलचस्प चीजों में चित्रित किया गया है। और वह यह है कि मुझे लगता है कि फिल्म का मुख्य विचार यह है कि अगर आप सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करें तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। वह वाक्यांश वास्तव में कुछ पंक्तियों में शामिल है। और क्या किसी को आखिरी दृश्य याद है? ऐसा कुछ बार होता है। सिर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर जब डॉक्टर वह नीचे गिर गया है और उसके सिर पर एक बैंड एड है, उसके सिर पर चोट लगी है। क्या किसी को अंत में ठीक से याद है जब मार्टी मैकफ्ली डेलोरियन में था और उसे कुछ ऊपर तक ले जाना था, उसे कार लेनी थी, उसे इसे शुरू करना था और एक निश्चित बिंदु पर शुरुआती लाइन को छोड़ना था, और उसे यह करना था इसे 88 मील प्रति घंटे तक ले जाओ ताकि वह अपने दिन भविष्य में वापस चला जाए। और अलार्म बजते ही कार रुक जाती है, उसकी कार में एक अलार्म है जो बजकर उसे बताता है कि उसे कब निकलना है, और जैसे ही अलार्म बजता है कार रुक जाती है। क्या किसी को पता है कि वह कार कैसे स्टार्ट करता है? किसी को याद है? वह अपना सिर स्टीयरिंग व्हील पर मारता है। तो विभिन्न दृश्यों की पुनरावृत्ति के माध्यम से, महत्वपूर्ण संवाद के माध्यम से आप पर जोर दिया जाता है कि यदि आप अपने दिमाग का उपयोग करते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और कथा इसी प्रकार काम करती है। इसलिए जब हम गॉस्पेल को देखते हैं तो हम देखेंगे कि कैसे पुनरावृत्ति और इस तरह की चीजें हमें यह समझने में मदद करती हैं कि मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन की जीवनी कथा का मुख्य बिंदु क्या है। ठीक है, हमारे पास तीन अन्य साहित्यिक विषय हैं। मैं डॉक्टर डेव मैथ्यूसन न्यू टेस्टामेंट इतिहास और साहित्य प्रस्तुत कर रहा हूँ क्रिसमस और कैनन पर व्याख्यान 5।